रूत अध्याय चार पद एक से लेकर पद चार तक। तब बोआस फाटक के पास जाकर बैठ गया और जिस छुड़ाने वाले कुटुंबी की चर्चा बोआस ने की थी वो भी आ गया। तब बोआस ने कहा, हे भाई, इधर आकर यही बैठ जा। तो वो उधर जाकर बैठ गया। तब उसने नगर के 10 वृद्ध लोगों को बुलाकर कहा, यही बैठ जाओ। वे भी बैठ गए। तब उसने छुड़ाने वाले कुटुंबी से कहने लगा, नओमी जो मोआब देश से लौट आई है, वो हमारे भाई एलीमेलेक की एक टुकड़ा भूमि बेचना चाहती है, इसलिए मैंने सोचा कि ये बात तुझको जताकर कहूंगा कि तू उसको इन बैठे हुओं के सामने और मेरे लोगों के इन वृद्ध लोगों के सामने मोल ले, और यदि तू उसको छुड़ाना चाहे तो छुड़ा, और यदि तू छुड़ाना ना चाहे तो मुझे ऐसा ही बता दे कि मैं समझ लूं, क्योंकि तुझे छोड़ उसके छुड़ाने का अधिकार और किसी को नहीं है और तेरे बाद मैं हूं। उसने कहा, मैं उसे छुड़ाऊंगा। तब यहूदियों का एक और कानून था जिसके अनुसार आप जब भी जमीन बेचते थे तो उसे फिर से खरीदने के लिए आपके पास अधिकार था, परंतु इस लेन देन को समय की सीमा में ही होना था। वे दस्तावेज तैयार करते थे और उस पर मोहर लगा देते थे। जब समय पूरा हो जाता था तब उस भूमि की मुक्ति का समय आता था। उस समय आपको वे दस्तावेज लाने होते थे और उनकी मोहर खोलना होती थी। आपको नगर के प्राचीनों के सामने ये दिखाना होता था कि उस भूमि को फिर खरीदने का अधिकार आपका है और आप में क्षमता भी है। कहने का अर्थ यह है कि किसी भी सौदे में उसे फिर से खरीदने का अधिकार सुरक्षित था। यहूदियों की व्यवस्था के अनुसार अगर आप गरीब हैं और आप उस जमीन को मुक्ति के समय वापस नहीं खरीद सकते, तब आपके परिवार का कोई और सदस्य आकर उसे खरीद सकता था, ताकि वो जमीन उसी परिवार में रहे, क्योंकि परमेश्वर इसराइल में पारिवारिक उत्तराधिकार को बचाना चाहता था। इसलिए आपका अगला कुटुंबी आगे आकर खरीदारी के समय उस जमीन को खरीद सकता था। नओमी और एलीमेलेक ने मोआब जाते समय अपनी जमीन बेच दी थी और अब उस भूमि का मुक्ति का समय आ गया था। इसलिए बोआज ने दूसरे संबंधी से कहा, तुम जानते हो कि नओमी अपनी भूमि का टुकड़ा बेचना चाहती है, क्योंकि वो उसे छुड़ा नहीं सकती और उसे छुड़ाने का हक तुम्हारा बनता है, और अगर तुम उसे लेना चाहते हो तो ले लो, और अगर नहीं लेना चाहते हो तो ठीक, तुम्हारे बाद मेरे सिवा उनका कोई नहीं है, इसलिए बताओ कि तुम क्या करना चाहोगे। उस व्यक्ति ने कहा, मैं उसको छुड़ा नहीं सकता। अध्याय चार पद पांच में। फिर बोआज ने कहा, जब तू उस भूमि को नओमी के हाथ से मोल ले, तब उसे रूथ मुआबिन के हाथ से, जो मरे हुए की स्त्री है, इस मनसा से मोल लेना पड़ेगा कि मरे हुए का नाम उसके भाग में स्थिर कर दे। दूसरे शब्दों में, तू रूथ को भी अपनी पत्नी बनाओगे और उसे पुत्र पैदा करोगे ताकि उस वंश का नाम रहे। उस व्यक्ति ने कहा, ओह नहीं, ऐसा तो मेरा निज भाग बिगड़ जाएगा। अब चूंकि वो आदमी शादीशुदा था और उसके भाग के लिए उसके पास पहले से बच्चे थे, उसने कहा, माफ करना, मेरी पत्नी ऐसा नहीं चाहेगी, हम इसे नहीं संभाल सकते। उसने बोआज से कहा, तुम उसे क्यों नहीं छुड़ा लेते। इसलिए बोआज इन सब बातों से बहुत खुश हुआ। अध्याय चार पद छह में। उस छुड़ाने वाले कुटुंबी ने कहा, मैं उसको छुड़ा नहीं सकता, ऐसा न हो कि मेरा निज भाग बिगड़ जाए। इसलिए मेरा छुड़ाने का अधिकार तू ले ले, क्योंकि मुझसे वो छुड़ाया नहीं जाता। ये पुराने समय का रिवाज था, अब ये रिवाज खत्म हो चुका है। ये दिलचस्प था, अभी कुछ समय पहले एक स्त्री ने अपने पति की मृत्यु के बाद अपने देवर के साथ यही प्रथा चलानी चाही। इसलिए उसने कोशिश की कि वो उसके साथ शादी करे और उस पुरानी व्यवस्था को पूरा करे। उसको मना करने पर इस स्त्री ने व्यवस्था को लेकर उसके खिलाफ एक बड़ा विषय बना दिया कि वो अपना जूता उतार कर उसे दे और वो स्त्री उसके मुंह पर थूक दे। समाज को ऐसा ही करना पड़ा। आज ये प्रथा समाप्त हो चुकी है, पुराने युग में ये प्रथा प्रचलित थी। और फिर उसके अनुसार अध्याय 4 पद 7 से 10 तक, पुराने समय में इसराइल में छुड़ाने और बदलने के विषय में सब पक्का करने के लिए ये प्रथा थी कि मनुष्य अपनी जूती उतार के दूसरे को देता था। इसराइल में गवाही इसी रीति होती थी, इसलिए उस छुड़ाने वाले कुटुंबी ने बोआज से ये कहकर कि तू उसे मोल ले, अपनी जूती उतारी और बोआज को दे दी। तब बोआज ने वृद्ध लोगों और सब लोगों से कहा, तुम आज इस बात के साक्षी हो कि जो कुछ एलीमेलेक का और जो कुछ किल्योन और महलोन का था, वो सब मैं नौमी के हाथ से मोल लेता हूं। फिर महलोन की स्त्री रूथ मोआबिन को भी मैं अपनी पत्नी करने के लिए इस मनसा से मोल लेता हूं कि मरे हुए का नाम उसके निज भाग पर स्थित करूं। कहीं ऐसा ना हो कि मरे हुए का नाम उसके भाइयों में से और उसके स्थान के फाटक से मिट जाए। तुम लोग आज साक्षी ठहरे हो। इसलिए मैंने वे सारी चीजें जो नौमी, एलीमेलेक, महलोन और किल्योन की थी खरीद ली, और मैंने रूथ को भी अपनी पत्नी बनाने को खरीद लिया। ये एक मजेदार बात है। यहां रूथ के प्रति अपने प्यार के खातिर उसने सारी बातों में खेत को पहला स्थान रखा था ताकि वो उसे अपनी दुल्हन बना ले। उसको खेत की जरूरत नहीं थी, लेकिन उसने खेत को सिर्फ इसलिए खरीदा कि दुल्हन को खरीद सके। यहां वो यीशु मसीह की बहुत सुंदर तस्वीर प्रस्तुत करता है कि उसने इस दुनिया को खरीदा ताकि अपनी दुल्हन कलीसिया को इस दुनिया से खरीद सके। वो इस संसार से नहीं, इस पृथ्वी से नहीं, परंतु अपनी दुल्हन से प्यार की वजह से यीशु ने संसार को खरीदा कि अपना खजाना बना सके। इसलिए राज्य के दृष्टांत में कहा है, मती 13:44 में, स्वर का राज्य खेत के छिपे हुए धन के समान है जिसे किसी मनुष्य ने पाकर छिपा दिया और मारे आनंद के जाकर और अपना सब कुछ बेचकर उस खेत को मोल लिया। इसलिए यीशु ने उस धन को, उसकी कलीसिया को अर्थात उसकी दुल्हन को इस दुनिया में देखा और उसने सारी दुनिया को खरीद लिया ताकि अपनी दुल्हन को ले सके। सुंदर, अति सुंदर। यहां भी वैसे ही है, बोआज और रूथ और यीशु और कलीसिया। अध्याय 4 पद 11 और 12। तब फाटक के पास जितने लोग थे उन्होंने और वृद्ध लोगों ने कहा, हम साक्षी हैं, ये जो स्त्री तेरे घर में आती है उसको यहोवा इसराइल के घराने की दो उपजाने वाली राहेल और लिया के समान करे, और तू एप्राता में वीरता करे और बेतलहेम में तेरा बड़ा नाम हो, और जो संतान यहोवा इस जवान स्त्री के द्वारा तुझे दे उसके कारण से तेरा घराना पेरिस कासा हो जाए, जो तामार से यहूदा के द्वारा उत्पन्न हुआ। ये दिलचस्प है कि वे यहूदा, तामार और पेरस के बारे में बात करते हैं, क्योंकि यही ये सारी बातें हैं जिस व्यवस्था के बारे में मैंने पहले आपको बताया था कि यहूदा के एक बेटे ने तामार से शादी की और बिना संतान के वो मर गया। यहूदा का दूसरा बेटा भी बिना संतान के मर गया। तब यहूदा अपने तीसरे बेटे को देने से हिचकिचाया और कहने लगा, अभी तो वो बहुत छोटा है, उसको जवान होने दो। और जब कुछ समय बाद वो जवान हो गया, तब यहूदा ने अपना तीसरा बेटा उसे नहीं दिया। तो जैसे मैंने आपको बताया था, तामार ने फिर खुद सब कुछ किया उसका वंश चलाने को। उसने वेश्याओं जैसे कपड़ा पहने और जाकर रास्ते में बैठ गई जहां से यहूदा गुजरता था। उसका पूरा चेहरा ढका हुआ था और उसने वेश्याओं जैसे कपड़े पहन रखे थे, इसलिए यहूदा ने सोचा कि वो एक वेश्या है। उसे एक प्रस्ताव दिया और उसने पूछा, क्या कीमत तुम मुझे दोगे? यहूदा ने कहा, तुम्हें जानवरों के झुंड में से एक बकरी का बच्चा दूंगा। तामार ने कहा, मैं कैसे मानूं कि तुम उसे लेकर वापस आओगे? यहूदा ने कहा, मैं अपनी अंगूठी तुम्हारे पास गिरवी रख दूंगा। इस तरह से वो तामार के पास गया, उससे संबंध बनाए और अपनी अंगूठी उसके पास गिरवी रख दी और वो एक बकरी बेचकर छुड़ा लेगा। ये प्रस्ताव उसने तामार को दिया। तामार इस तरह गर्भवती हुई और वेश्याओं के कपड़े उतारे वापस घर गई। यहूदा ने अपने एक नौकर के हाथ बकरी का बच्चा भेजा कि जाकर उसकी अंगूठी वापस ले आए। वो नौकर वहां आया और देखा कि वहां तो कोई भी वेश्या नहीं बैठी है, तो उसने वहां दूसरे लोगों से पूछा, वो वेश्या कहां गई जो यहां बैठती थी? उन्होंने कहा, यहां कोई वेश्या नहीं बैठती। उस नौकर ने वापस आकर यहूदा से कहने लगा, मुझे वहां कोई नहीं मिला और वहां के लोगों ने बताया कि यहां कोई वेश्या नहीं बैठती। और यहूदा ने कहा होगा, ठीक है, जाने दो। तब यहूदा ने सुना, तुम्हारी बहू तामार गर्भवती है। उसने कहा, उसे यहां ले आओ, हम उसे पत्थरवाह करेंगे। इसलिए वो बाहर लाई गई और उसने वो अंगूठी दिखाई और कहा, जिसकी ये अंगूठी है उसी के द्वारा मैं गर्भवती हूं। आपने देखा कि ये कुटुंबी का फर्ज था कि अपने मरे हुए बच्चे के लिए बच्चा पैदा करे। उस जवान लड़की ने यहूदा को ये करने के लिए जाल में फंसाया। यहूदा ने माना कि वो गलत था और तामार सही थी। तुम मेरे से ज्यादा धर्मी हो, मैंने ही मना किया था, तुम मेरे से ज्यादा धर्मी हो। वो बेटा जो पैदा हुआ वो पेरिस कहलाया। वो यीशु मसीह की वंशावली की लाइन का हिस्सा बना, इसलिए एलीमेलेक भी इसी लाइन में है और नीचे आए तो वो एलीमेलेक का वंशज है। इसलिए लोगों ने कहा, ये भी उसी तरह की परिस्थिति है कि जहां एक बूढ़ा आदमी कुटुंबी की जरूरत को पूरी कर रहा है और एक बेटा पैदा करेगा। परमेश्वर तुझे आशीष दे और ये स्त्री तामार की तरह हो जिसने पेरस को जन्म दिया। तुझे एक बेटा उत्पन्न हो और इस रिश्ते से आने वाला बच्चा एक आशीषित बच्चा हो। इस तरह लोगों ने बधाई देते हुए उसी के पूर्वजों के बारे में समान परिस्थिति बताई, कम से कम उन परिस्थितियों की जहां कुटुंबियों ने मरे हुओं के लिए परिवार बनाया। तेरा घर पेरस के घर के समान हो जिसे तामार ने यहूदा से जन्माया था, वैसे ही ये बच्चा जो परमेश्वर तुझे इस जवान स्त्री के द्वारा दे। अध्याय 4 पद 13 से 15 तक। जब बोआज ने रूत को ब्याह लिया और वो उसकी पत्नी हो गई, और जब वो उसके पास गया तब यहोवा की दया से उसको गर्भ रहा और उसका एक बेटा उत्पन्न हुआ। तब स्त्रियों ने नौमी से कहा, यहोवा धन्य है जिसने तुझे आज छुड़ाने वाले कुटुंबी के बिना नहीं छोड़ा। इसराइल में उसका बड़ा नाम हो और ये तेरे जी में जी ले आने वाला और तेरे बुढ़ापे में पालने वाला हो, क्योंकि तेरी बहू जो तुझसे प्रेम रखती है और सात बेटों से भी तेरे लिए श्रेष्ठ है, उसी का ये बेटा है। इसलिए नौमी, जिसने कहा था मुझे कड़वी बुलाओ, अब जान गई कि उसका परिवार समाप्त नहीं होगा, परंतु एक पोता आएगा, और इस अनुभव से वो बहुत आनंदित और आशीषित हुई। वे कह रहे थे, वो तो तुम्हारे लिए आशीषों का जरिया हो और तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा हो। चौथा अध्याय पद 16 और 17 में, फिर नौमी उस बच्चे को अपनी गोद में रखकर उसकी धाई का काम करने लगी, और उसकी पड़ोसिनों ने ये कहकर कि नौमी का एक बेटा उत्पन्न हुआ है, लड़के का नाम ओबेद अर्थात उपासक रखा। यशे का पिता और दाऊद का दादा वही हुआ। ये बच्चा दाऊद का दादा था जो इसराइल का राजा बना। रूत चौथा अध्याय 18 से 22 पद, पेरेस की वंशावली है अर्थात पेरेस से हेस्रोन और हेस्रोन से राम और राम से अमीनादाब और अमीनादाब से नाशोन और नाशोन से सलमोन और सलमोन से बोआज और बोआज से ओबेद और ओबेद से ईशाय और ईशाय से दाऊद उत्पन्न हुआ। अब पेरेस से लेकर दाऊद तक 10 पीढ़ी है, और इस तरह हमारे पास दाऊद की वंशावली की पृष्ठभूमि है जो आगे चलकर यीशु मसीह की भी हुई, क्योंकि मसीह दाऊद के वंश से आया। जो पेरेस के वंश से था, जो तामार से यहूदा के द्वारा एक कठिन परिस्थिति में पैदा हुआ, यहां मोआबी जो परमेश्वर के द्वारा श्रापित थे, जहां तक इसराइलियों का संबंध है जिनका परमेश्वर के घर में अगली 10 पीढ़ी तक आना वर्जित था, यहां दाऊद तक 10 पीढ़ी पूरी होती है। इसलिए आपके पास मसीह की वंशावली है। इसका मतलब है कि पृष्ठभूमि कैसी भी हो, आप मसीह के साथ एक पहचान रखते हैं। आप कह सकते हैं, मेरे रिश्तेदार अच्छे लोग नहीं हैं। ठीक है, उसके भी नहीं थे, परंतु यीशु मसीह के साथ हर इंसान एक अनोखी और विशेष पहचान रखता है। जैसे बोआज छुड़ाने वाला कुटुंबी था और उसने व्यवस्था के अनुसार संपत्ति को छुड़ाया ताकि दुल्हन को ले ले, वैसे ही यीशु हमारा छुड़ाने वाला कुटुंबी है। वो मनुष्य बना जिससे कि वो हमारा निकट कुटुंबी बने और हमें मुक्ति दिलाए। छुड़ाने वाला कुटुंबी होने के लिए आवश्यक था कि वो मनुष्य बने, ये बहुत जरूरी था। इसलिए उसने मनुष्य का रूप लिया ताकि मनुष्य की तरह छुड़ाने वाला कुटुंबी बन के मनुष्य को छुड़ाए, क्योंकि संसार आदम के द्वारा शैतान को बेचा जा चुका था। अब ये सारा एग्रीमेंट एक पुस्तक में बंद कर 7 मोहरों से सील कर दिया गया है। ये दुनिया शैतान की है और इस पर वो राज्य करता है। उसने इसे आदम से ले लिया था। यीशु दुनिया को छुड़ाकर परमेश्वर को वापस करने के लिए आया था। उसने मुक्ति धन अपने लहू के रूप में दिया। इब्रानियों की पुस्तक उसके दूसरे अध्याय के 8वें पद में लिखा है, तूने सब कुछ उसके पांवों के नीचे कर दिया, यीशु मसीह। लेकिन हम अब तक सब कुछ उसके अधीन नहीं देखते। हम नहीं देखते कि सब कुछ हो चुका है जैसे कि होने वाला है राज्य का समय, लेकिन हम यीशु को जो स्वर्ग दूतों से कुछ ही कम किया गया था। मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए उस दिन का इंतजार करते हुए देखते हैं जब ये संसार को छुड़ाकर परमेश्वर को वापस दे दे। इसराइल के इतिहास में एक समय था जब शौल इसराइल का राजा था। परमेश्वर की आज्ञा ना मानने के कारण परमेश्वर ने शमूएल से कहा, यिशे के घर जा और उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए अभिषेक कर। इसलिए शमूएल यिशे के घर आया और उसके पहले बेटे एलियाब का रूप और डील डॉल देकर शमूएल ने सोचा, वो कितना सुंदर है, यही वो व्यक्ति होगा जिसे परमेश्वर ने पसंद किया होगा। प्रभु ने कहा, नहीं नहीं, तुम बाहरी रूप देख रहे हो, परंतु मैं उसका मन या हृदय देखता हूं। इस तरह यिशै ने एक एक करके अपने सारे पुत्रों को भेजा, परंतु प्रभु ने किसी की गवाही नहीं दी। अंत में शमूएल ने कहा, क्या सब लड़के आ गए? नहीं, मेरा एक और बेटा है, लेकिन वो अभी छोटा है, वो बाहर भेड़ बकरियां चरा रहा है, मैं नहीं समझता वो इसके लायक है। ठीक है, उसे अंदर लेकर आओ। यिशै बाहर गया और सीटी बजाई। दाऊद भागते हुए अंदर आया, गंदा और पसीने से भरा हुआ। परमेश्वर ने शमूएल से कहा, यही है। तब शमूएल ने अपना तेल का सिंग लेकर दाऊद के सर पर उंडेल दिया और ये छोटा बच्चा वहां खड़ा था, उसके सिर से नीचे तक तेल बह रहा था और वो नहीं जानता था कि क्या हो रहा है। आप जानते हैं, परमेश्वर ने उसे इसराइल का राजा होने के लिए अभिषेक किया। इसके बाद क्या हुआ? क्या शौल ने सिंहासन पर दाऊद को बैठा दिया? नहीं नहीं नहीं, बल्कि शौल दाऊद को खत्म करने की कोशिश में लग गया। उसने उसे मारने की कोशिश की, उसने उसे भगाने की कोशिश की और अंत में उसे देश से बाहर भगा दिया। परंतु शौल उस वस्तु को पकड़े रहना चाहता था जो कानून अब उसकी नहीं थी। वो उसे बलपूर्वक प्राप्त करना चाहता था जो उसका नहीं था। हमारे पास एक परिणाम है। तकनीकी रूप से संसार यीशु का है, उसने उसकी कीमत देकर उसे छुड़ाया है, परंतु फिर भी हम सब कुछ उसके अधीन नहीं देखते। शैतान अपनी पूरी ताकत से अड़ा है और यीशु को भगाने में लगा है, उस वस्तु के लिए अड़ा है जो कानूनन अब उसका नहीं है। अपनी पूरी ताकत से जबरदस्ती उसे पकड़े है जो उसका नहीं है। परंतु प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के पांचवें अध्याय के अनुसार उस पुस्तक को खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने का दिन आ रहा है। स्वर्गदूत घोषणा करेगा, इस पुस्तक को खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने के योग्य कौन है? और यीशु वध किए हुए मेमने की तरह आगे आएगा। वो परमेश्वर के दाहिने हाथ से इस पुस्तक को ले लेगा और कलीसियाएं उसकी महिमा में ये गीत गाएंगी, मेमना इस पुस्तक को लेने और इसकी मोहरे खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हमें मोल लिया। तूने अपने लहू से हर एक कुल, भाषा, राष्ट्र और जाति से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। तूने उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया है, वे पृथ्वी पर राज्य करें। फिर आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को और आगे पढ़ेंगे और मोहरे तोड़ने की शुरुआत देखेंगे। दसवें अध्याय में आप देखेंगे कि वो पृथ्वी पर वापस आ गए हैं। उनका एक पैर पृथ्वी पर और दूसरा समुद्र में है और उनके हाथों में खुली हुई पुस्तक है और वो घोषणा करता है, इस पृथ्वी का राज्य अब से हमारे परमेश्वर का राज्य है। अब कोई देरी नहीं है, अब वो इस पृथ्वी पर अपने राज्य का आरंभ करेगा। वो सब कुछ ले लेगा जो कानूनन उनका है, वो उन सब पर अधिकार कर लेगा और इस पृथ्वी पर अपने साम्राज्य की स्थापना करेंगे। इसलिए इस इसराइल के इतिहास में आप यीशु मसीह की वंशावली को देखते हैं। एक थोड़ा सा भविष्य दर्शन, जब यीशु राजाओं के राजा की तरह और प्रभुओं के प्रभु की तरह अपने अधिकार को लेने आएगा। लेकिन जिस तरह बोआस का लेन देन शहर के वृद्धों के सामने हुआ, इसी तरह स्वर्ग में इस लेन देन के समय भी सिंहासन के चारों ओर 24 वृद्ध होंगे। हम भी वहां होंगे, क्योंकि हमें भी वो गाना गाना होगा। मैं तो इसकी प्रतीक्षा ही नहीं कर पा रहा हूं। आपको पता है, शैतान ने अपना दिन देख लिया। आप अपने चारों ओर संसार को देखिए और परमेश्वर के विरुद्ध जाने का अंजाम देखिए। ओ परमेश्वर, तेरा राज्य आए, तेरी मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। आइए प्रार्थना करें। हे पिता, हम आपके राज्य के जल्द आने की आशा के लिए धन्यवाद देते हैं, और धन्यवाद देते हैं सारी कलीसिया के लिए और हमारे लिए, कि हम सब आपके साथ आपके सिंहासन के चारों ओर होंगे जब आप अपने अधिकार को वापस लेंगे जो आधिकारिक तौर पर आपका है, क्योंकि आपने हमारे लिए अपना बलिदान दिया और अपना लहू हमारे छुटकारे के लिए भाया। परमेश्वर, हमें वो ताकत दे जिसकी हमें जरूरत है, और वो रास्ता दिखा जिस पर हमें चलना है, तथा ऐसी बुद्धि दे जिसकी हमें इस समय जरूरत है, जब हम इस प्रदेश में तेरा और तेरे राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं, आमीन।